Hare Krishna, this lecture on Harinam given in Ames Hospital, New Delhi on 24th February 2015 by myself Prashant Mukund Das.
Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. इस प्रकार से वो भगवान के नामों का उच्चारण किया करते थे. तो एक दिन वो अपना कीर्तन करते करते एक स्थान पर पहुंचते हैं जो कि एक जौहरी जो होता है ना जौहरी गोल्ड गोल्डस्मिथ उसके वहां पर पहुंच जाते हैं. और उस दिन उसका क्या होता है, जन्मदिन होता है, बर्थडे है ना. तो जन्मदिन के दिन आदमी क्या करता है, जो उसकी इच्छा हो वो पूरी करता है और जिसकी भी जो इच्छा हो वो पूरी करता है. तो बर्थडे के दिन एक दूसरे से हम जाते हैं, उनको विशेष देते हैं और वो भी आपको गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, केक खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं. तो इस तरह से उनका भी जन्मदिन था और वो बोले कि अरे एक संत आ रहे हैं नामदेव नाम के, कह रहे हाँ ठीक है बुलाओ, जो भी इच्छा होगी वो उनको हम प्रदान करेंगे. तो नामदेव जी को बुलाया गया और बोला गया कि बोलिए नामदेव जी आप क्या चाहते हैं हमसे, हम आपको प्रदान करेंगे. तो बोले हमारी इच्छा है कि आप जो है हमको अपना जो है हमारे नाम के बराबर की कोई वस्तु दीजिए, हमको आपके धन की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारा जो नाम है उसके बराबर की कोई वस्तु दे दीजिए. तो बोले आपके नाम के बराबर की वस्तु मैं कुछ समझा नहीं. तो उन्होंने बोला कि देखिए हम तो एक भगवान का नाम लेते हैं, क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो उन्होंने वहीं पर ये तुलसी का पौधा था, उस तुलसी के पौधे से एक पत्ता निकाला और उसके ऊपर क्या लिखा, कृष्ण. क्या लिखा, कृष्ण. और कृष्ण लिखा लेकर उनको पत्ता प्रदान किया और जौहरी को बोले गोल्डस्मिथ को कि आप इसके बराबर का धन हमको प्रदान कर दीजिए, वही हमारे लिए संतुष्टि होगी. तो जौहरी जो था वो हंसने लगा अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, आज जब मैंने अपना दरबार खोल दिया है, करोड़ों की जायदाद देने को तैयार हूँ, तब ये एक संत जो है ना मूर्ख क्या कह रहा है, तुलसी के पत्ते पर कृष्ण नाम के बराबर जो है मुझसे धन मांग रहा है. अरे इसका कितना तोला होगा, आधे तोले से भी कम में तेरा काम हो जाएगा, आज मैं देने को तैयार हूँ, मांगो क्या चाहते हो. तो बोला नहीं आप इतना ही दे दीजिए बस वही काफी है. कह रहे तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा. तो उन्होंने वो पत्ता लिया और जौहरी के पास होता है ना वो छोटा वाला तराजू, उसके हाथ काटा उसके ऊपर रख दिया और इधर से आधे तोले से भी कम का वेट चढ़ाया. चढ़ाया तो क्या हुआ, तुलसी का पत्ता जो था वो नीचे रहा और जो ये वेट जिसने चढ़ाया था ये ऊपर चला गया. ऊपर चला गया मतलब कि तुलसी के पत्ते से वो हल्का था. तो टेंशन में आ गया, बोला ये कैसे हो गया कि तुलसी के पत्ते पे चंदन से कृष्ण लिख दिया और वो नाम जो है भारी हो गया. तो उन्होंने कहा ठीक है क्या करूं. तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो थोड़ा वजन और चढ़ा दो. जो पड़ोसी लोग थे बर्थडे में सारे आए हुए थे रिश्तेदार, तो बोले ठीक है चढ़ा दो. तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया और फिर चढ़ा दिया. थोड़ा चढ़ाने के बाद क्या हुआ, तुलसी का पत्ता उठा, नहीं उठा. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि मेरी दुकान में जितना भी अब तो बेइज्जती होने लगी, तो जितने भी तोले सोना था जितने भी चांदी थी वो सब बड़े वाले तराजू पे रखकर चढ़ा दिया. अब क्या हुआ, पत्ता उठा, नहीं उठा. अभी वो टेंशन में आ गया, बोले अरे क्या करूं मैं, मेरी तो बेइज्जती हो रही है. तो अपने रिश्तेदारों से बोला देखो आज मुझे लोन की जरूरत है, आपके पास जितना भी लोन है वो मुझे प्रदान कर दो, बाद में मैं क्या करूंगा उस धन को चुकाने के लिए आपको अपना पूरा जीवन दे दूंगा. करे ठीक है. तो उनकी दुकानों में भी जितना धन था वो सब मंगाया गया, उस तराजू पे चढ़ाया गया और इधर क्या रखा गया, तुलसी का पत्ता, उस पे क्या लिखा गया, कृष्ण. अभी तो क्या हुआ, जब वो उठा कि नहीं उठा, पत्ते वाली साइड अभी भी नहीं थी. तो वो पूछने लगा, रोने लग गया, बोला कि अब तो मैं हैरान हो गया, ये कैसे हुआ, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं. बोले अच्छा आप एक काम करो, आपने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया है. कह रहे हाँ बहुत पुण्य किया, हरिद्वार स्नान किया, जाकर गंगा स्नान किया है, हम वैष्णो देवी गए हैं, हमने संत समागम किया है, हमने परिक्रमाएं करी हैं, हम गोवर्धन गए हैं. हाँ ठीक है. तो सारे के सारे पुण्यों को स्मरण करके जल लेकर अपने हाथ में और तीन बार क्या बोलो, श्री कृष्णाय अर्पणाय, हाँ मैं ये अर्पण करता हूँ आपको. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने जितने भी पुण्य इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे पुण्य अपने चढ़ा दिए. अब क्या हुआ, पत्ता उठा, अभी भी नहीं उठा. ओ हैरान हो गए, अभी अब कैसे करूं. तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बोला, अपने पड़ोसियों से बोला कि आप भी अपने अपने पुण्य दे दीजिए, मैं करूंगा, आप दोबारा से तीर्थ यात्राएं कर लेना. ठीक है. तो ऐसे ही उन्होंने फिर सारे के सारे पुण्य भी अर्पण कर दिए. अभी वो उठा, अभी भी नहीं उठा. तो रोने लगा, बोला ये क्या लीला है स्वामी. तो नामदेव जी ने बोला कि देखो जो कृष्ण नाम है ना वो ऐसा है कि उसकी बराबरी ना तो इस संसार का कोई धन कर सकता है, और उसकी बराबरी ना कोई संसार का पुण्य कर्म कर सकता है, ना उसकी बराबरी कोई तीर्थ यात्रा कर सकती है. इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण नाम का धारण करता है अपने जीवन में वो धनवान भी है
वो पुण्यवान भी है और वो क्या है तीर्थ यात्री भी हो जाता है एक ही स्थान पर बैठे बैठे। तो आप सब लोगों को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथों को जोर से खींचना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए देखिए इसमें क्या है एक बहुत ही गूंध रहस्य है। जितने परसेंटेज से आप भगवान को सरेंडर होंगे उतनी परसेंटेज से भगवान आपको सरेंडर होंगे। ये तो नॉर्मल में भी देखा गया है ना, किसी एक व्यक्ति का काम आप जितना परसेंटेज में आएंगे उतना ही वो आपके आएगा। अगर आप 10% किसी से व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति भी 10% व्यवहार करेगा। फैमिली रिलेटिव से आप 100% प्रेम करते हैं तो वो भी आपसे 100% प्रेम करते हैं। अभी कृष्ण के लिए बोला जाए कि नाम लो और आप इतना सा हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे, तो भगवान भी फिर इतना करेंगे ले लो। अब चाहते हो कि भगवान पूरा दे दे और हमारे हाथ अंदर ही रहे तो कभी होगा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हाथों को पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा जोर से ऐसे और बोलना पड़ेगा हाथों को हिला के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तभी फिर कृष्ण जो है वो आ जाते हैं। कहते हैं नाम बिना कली काले ना ही आर धर्म, नाम के बिना इस संसार में और कोई धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि हम धार्मिक हैं, जी हम ये धर्म पालन करते हैं, जी हम वो धर्म पालन करते हैं, लेकिन भगवान के नामों का जप नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या नहीं है, धार्मिक नहीं है। क्या नहीं है, धार्मिक नहीं। क्यों नहीं, नाम बिना कली काले ना ही आर धर्म, सर्व मात्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। शास्त्र का मर्म यही है कि सारे के सारे शास्त्रों का सार है कि व्यक्ति को कलयुग में केवल क्या भगवान के नाम की महिमा को जानना चाहिए, है ना। और बताते हैं जो व्यक्ति भगवान के नामों को धारण करता है, जैसे जो व्यक्ति भगवान के नामों का 16 माला हमारे इस कौन में बताया गया जाप करता है, और अगर वो व्यक्ति आपके इस एम्स में आता है ना तो क्या बन जाता है, तो शास्त्र में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, कहते हैं तीर्था नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षि। कृष्ण का जो नाम है वो महर्षि है। तीर्थ कुर्वन्ति जगतिम गृहतिम कृष्ण नाम ये। जो व्यक्ति कृष्ण नाम को धारण करने वाला आपके इस एम्स में भी पैर रखेगा तो क्या हो जाएगा, तीर्थ कुर्वन्ति जगतिम, इस जगत को तीर्थ बना देता है, तो ये स्थान क्या बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा, है ना। तो आपको उस तीर्थ में जाने का पुण्य प्राप्त होगा यहीं पर अगर कोई कृष्ण नाम लेने वाला व्यक्ति आए, और अगर आप ले रहे हैं तो आप भी इस जगत को क्या बना रहे हैं, तीर्थ बना रहे हैं, है ना। तो जितने भी ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टर्स हैं और अदर डिवोटीज हैं या अदर नॉन डिवोटी फैमिलीज रहती हैं, आप लोग उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। इस संसार का सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है, किसी भी व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालना। खाना देंगे एक दिन पेट भर जाएगा, लेकिन दूसरे दिन वो फिर चोरी कर सकता है। आज आप उसे कपड़ा देंगे लेकिन थोड़े साल बाद वो फट जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे कृष्ण नाम प्रदान किया तो क्या होगा, अंत काल में जब वो कृष्ण नाम लेते हुए अपने शरीर का त्याग करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, इस जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाएगा। तो आपने क्या किया, उसके जन्म मृत्यु चक्र से उसको छुड़वा दिया। तो ये सोशल वेलफेयर बेस्ट है कि नहीं है। एक बार और एक चीज बताते हैं आपको। मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, भगवान एक उसके पिछे जो थे वो चले गए पढ़ने के लिए बाहर, विदेश चले गए, और विदेश में जाकर उनके बच्चों ने क्या किया, लड़के ने शादी कर ली और अभी पिताजी से मिलने नहीं आता वापस, मिलने के लिए नहीं आता। तो पिताजी ने क्या किया, उसके फ्रेंड्स को फोन किया और बोले देखो मेरा बेटा ना चला गया है, कुछ करो। तो सारे फ्रेंड्स ने सोचा कि कुछ करते हैं इनके माँ बाप की मदद करने के लिए। तो पहले दोस्त ने क्या सोचा कि इसके पिताजी माताजी को क्या देना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए। तो उसने बोला मेरी महीने की जितनी भी सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज मैं आपको हर महीने दूंगा, तो मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा, मेरे दोस्त के माता पिता। दूसरे ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको वस्त्र प्रदान करूंगा हर महीने की सैलरी में से। तीसरे ने सोचा कि मैं आपको क्या दूंगा, अन्न और धान, जो भी आपकी खाने की जरूरतें होंगी मैं आपकी पूरी करूंगा। लेकिन उनका एक और फ्रेंड था, चौथा मित्र, उसने क्या किया, उसने कहा आप चिंता मत करिए, रोइए मत, उसका वियोग मत करिए, मैं जाता हूँ उसको बुला के लाता हूँ। तो वो गया अमेरिका, अमेरिका का फ्लाइट का खर्चा किया, वहां जाकर उनको बोला देखो कान पकड़ के, तुम मेरे पुराने दोस्त, लंगोटिया यार बोलते हैं, तुम मेरे पुराने मित्र हो और चलो, तुम्हारे माँ बाप क्या है, परेशान है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। तो उसको और उसकी पत्नी को लेकर इंडिया वापस आते हैं और उसके माँ बाप को लाके कहते हैं लो तुम्हारा बेटा आ गया। अभी ये चार मित्र हैं, इन चारों ने मदद करी, लेकिन उन सब में से माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार किसको करेंगे, हाँ जी प्रभु जी, लोग नहीं बोल रहे हैं, फोन पे बिजी है, हाँ जी, कौन से को प्रेम करेंगे, क्यों करेंगे? माँ बाप को लेकर। इसी प्रकार से हम सब कौन है? भगवान गीता में कहते हैं माम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। इस पूरी सृष्टि में जो लोग भी हैं वो मेरे ही अंश हैं। तो हम सब कौन हो गए? भाई बहन हो गए, पति पत्नी को छोड़ के भाई बहन हो गए, माता प्रभु हो गए। तो जितने भी लोग हैं हम आपस में भाई बहन हैं। अगर हम भगवान का घर छोड़कर यहाँ आ गए संसार में, भौतिक संसार में, और छोड़ने के बाद भी वहीं जाना है, तो इसमें से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि क्या करे, भगवान के नामों का जाप किसी को कराकर वापस भगवान के तक जोड़ दे, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय होगा कि नहीं होगा भगवान का? या फिर वो व्यक्ति प्रिय होगा जो कि लोगों को खाना देता है, लोगों को कपड़े देता है, लोगों को धन देता है। इसलिए द बिगेस्ट सोशल वेलफेयर इज दैट गिविंग कृष्ण नेम टू एनीबॉडी। किसी भी व्यक्ति को भगवान का नाम प्रदान करना ये सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर है। तो आप खुद तो भगवान के नामों का जाप करें, साथ में यहाँ की संख्या भी बढ़ाए। जितने भी लोग हैं ना एम्स में उनको बुला के लाएं और बोलें कि चलो चलो वहाँ कथा होती है, वहां पर मंगलवार को ऐसा प्रोग्राम होता है। और आप क्या करना चाहिए, अगर अपने जीवन में आप सुख शांति चाहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो इस संसार में एकमात्र केवल एक ही चीज है जो आपको ले जा सकती है, क्या? भगवान के नामों का जाप, है ना? तो भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। एक बार एक भक्त थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। जिस तरह से ये मंदिर है इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो शिव जी की पूजा किया करते थे। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, है ना? जैसे शिव जी, अभी सोमवार का दिन था, शिवरात्रि का दिन, मंगलवार को पिछले जो है ना बहुत सारे भक्तों ने भगवान को जल चढ़ाया, लेकिन ये सोचते नहीं क्यों जल चढ़ा रहे हैं। शिव जी वैसे कैलाश में बैठे हुए हैं, ठंड के इलाके में कोई बैठा हो, वस्त्र पहनते नहीं है ज्यादा, बस एक छाला पहनते हैं, उसके ऊपर आप लोटा लेके पानी पे पानी पानी पे पानी चढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? फिर भी पता नहीं क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे भैया हमने तो सुना है ऐसा ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली शिव जी ने जो क्या कहा है वो हम नहीं जानते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत कैसा है? सपने के समान है। और सच्चाई क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान का नाम कोई नहीं लेता, भीड़ में लगे होते हैं और मौका देखते हैं कि कोई पीछे देखे और मैं आगे निकल के जल चढ़ा दूं। ये भी नहीं देखते दूसरे के कपड़े पे जा रहा है क्या हो रहा है, और दूध मिक्स करके पानी मिक्स करके बस जल चढ़ाने से मतलब इससे क्या होगा, बड़ा पुण्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर पुण्य प्राप्त होता तो दुख क्यों आते हमारे संसार में, जीवन में? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुख और सुख आपको मिलेंगे। आप कितना भी अथक प्रयास करो कि मुझे बुखार ना आए, लेकिन आता है ना, क्योंकि इसका मतलब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। अगर हमारे वश में होती तो एम्स बंद हो जाता, कोई बीमार थोड़ी पड़ता यहाँ आता नहीं। वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। हम कंट्रोलर्स नहीं है, हम क्या, हम कंट्रोल्ड बाय समबडी है, और वो समबडी कौन है? कृष्ण। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो था वो शिव जी का उपासना करा, और उपासना करने से शिव जी प्रकट हुए। जब शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी बोले बोलो क्या चाहिए। तो बोला ये तो मैंने सोचा नहीं कि आप कभी प्रकट हो जाएंगे, मैं तो सिर्फ जल चढ़ाता था, प्रणाम करता था, आप क्या बोलो क्या चाहते हो? बोला मुझे तो अपनी वाइफ से डिस्कस करना पड़ेगा, कलयुग है, अगर पत्नी से बिना पूछे मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो कल को कहेगी ये कम मांगा है ज्यादा मांगा है ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, पत्नी से पूछना पड़ेगा। तो गया पत्नी के पास, शिव जी बोले कोई बात नहीं, मेरा नाम तो क्या है? आशुतोष, है ना, मैं तो कम में ही संतुष्ट हो जाता हूँ, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तो तुम जाओ और पूछ कर आओ, मैं यहाँ वेट करूंगा। वो गया अपनी पत्नी से पूछने, अरे ओ भाग्यवान, आज तो हमारा सच्चा भाग्य खुल गया, क्या हुआ? आज शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन प्रदान किए हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो क्या मांगू? अरे तो मेरे पास क्यों आ गए? पत्नी बोल रही, जाओ उनसे बोलो, उनके पैरों में गिर जाओ और बोलो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु तुम्हें दे दें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो तुरंत दौड़ कर गया और शिव जी को बोला कि शिव जी मुझे क्या करिए, संसार की सबसे कीमती वस्तु प्रदान कर दीजिए। तो शिव जी बोले देखो संसार की सबसे कीमती वस्तु मेरे पास तो है नहीं, एक्चुअली मैं तो क्या हूँ, वैरागी हूँ, है ना, क्योंकि अगर मेरे पास कीमती वस्तु होती है ना तो मैं ऐसे बैल बकरी लेकर नहीं घूम रहा होता, मैं तो खुद ही बैल के ऊपर चलता हूँ, बाइक नहीं है, कोई होंडा सिटी नहीं है, ऑडी नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही बैल पे चलता हूँ, मेरी पत्नी शेर पे चलती है, खाने पीने के लिए हम पहाड़ों में रहते हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, हमारे जो दोस्त यार हैं वो सब भूत प्रेत हैं, है ना, तो हमारा तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ, यहाँ से वृंदावन जाओ, और वृंदावन में एक संत रहते हैं सनातन गोस्वामी, क्या नाम है? हाँ, तो सनातन गोस्वामी आपको क्या प्रदान करेंगे, इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु प्रदान करेंगे। उनके पास एक रत्न है, चिंतामणि। कौन सा रत्न? वो कैसा रत्न होता है कि जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे कि इस वस्तु को मुझे प्राप्त करना है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और उनके पास एक और स्टोन है, उसका नाम है पारस मणि। क्या नाम है? वो कैसी होती है? उसको जैसे ही टच करो किसी लोहे की वस्तु से, वो सोना बन जाती है। कह रहे अच्छा, ऐसी ऐसी वस्तु है उनके पास, और वो सन्यासी है, संत है। कह रहे हाँ, जाओ। तो चले गए सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के षट गोस्वामियों में से एक थे, जिनका विग्रह यहाँ पर फोटोग्राफ लगाया गया है, जिसमें से श्री रूप सनातन जो थे सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटीज थे, है ना। छह है यहाँ पर, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है ना। तो इनके हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया अपने जीवन में, वृंदावन की लीला स्थलियों को खोज कर निकाला हमारे लिए। आज हम जाते हैं वृंदावन में लस्सी पीने, लेकिन लस्सी पीने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर मंदिर है। और मंदिर क्यों है? क्योंकि उनको सिक्स गोस्वामी, जो छठ गोस्वामी है, उन्होंने खोजा निकाला, है ना, उनको सर्च किया। वरना क्या था, ये जंगलाना वृंदावन जो है वो नष्ट हो चुका था। अभी 500 साल पहले छह गोस्वामियों ने आकर वापस वृंदावन को स्थापित किया। और वो इतने दिव्य थे कि वो जिस स्थान पर चलते थे वहां पर लीला स्थलियों में से कृष्ण स्वयं प्रकट होकर उनको बोलते थे, मैंने यहाँ ये लीला करी है। तब वहां पर उसी प्रकार की लीलाओं के मंदिर बनाए गए, है ना। तो ये 500 साल पुराना वृंदावन जो आप देखते हैं, अन्यथा क्या हुआ था, 5000 साल पुराना वृंदावन तो नष्ट हो चुका था। और इनके वृंदावन बनाने के बाद भी ऐसे जो है राजा आए, जिसमें से एक राजा थे औरंगजेब। उन्होंने क्या किया, सारे के सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। तो जो वृंदावन आज आप देखते हैं, उस वृंदावन को भी नष्ट किया जा चुका है। ओरिजिनल वृंदावन जो सिक्स गोस्वामी ने बताया था, वो तो अभी लॉस्ट हो गया है। जो मंदिर 7 मंजिल का होता था, वो मंदिर की 5 मंजिलें तोड़ दी गई, सिर्फ 2 मंजिल का रह गया है। कुछ विग्रह भगवान के जो विग्रह थे, पुजारी उठाकर जयपुर ले गए, है ना। क्यों? क्योंकि औरंगजेब उनको तोड़ने लगा था, तोड़ देता था। तो आप पूछेंगे जयपुर में नहीं तोड़ा उन्होंने? तो श्रील प्रभुपाद जो स्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बताते हैं किसी व्यक्ति की अगर तारीफ की जाए ना, अगर वो दुश्मन भी हो तो दुश्मन ही भूल जाता है, व्यक्ति को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है कि नहीं। तो जब औरंगजेब आया, तो वहां के जो राजा थे जयपुर के, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, बुद्धिमान, हां बुद्धि क्या लगाई। और जैसे औरंगजेब एंटर किया ना, वहां पर विग्रह चले गए थे सारे वृंदावन के। वो बोला, मैं एक भी हिंदू मंदिर नहीं रहने दूंगा, मैं तोड़ दूंगा सारे मंदिर, है ना, सिर्फ मुझको भगवान मानो। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्मानी सर्वशः। व्यक्ति तो प्रकृति के गुणों में राजा बनता है या फकीर बनता है, लेकिन क्या होता है, अहंकारवश उसे लगता है मैं मेरे कारण राजा बना हूँ, मैं मेरे कारण डॉक्टर बना हूँ, मैं मेरे कारण PhD कर रहा हूँ। एक्चुअली वो अपने कारण नहीं कर रहा है, उसने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे फल मिल रहा है। प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन कितने लोग क्या बन पाते हैं। अगर ऐसा होता कि अपने प्रयास से कोई बनता, तो देखिए एक कुत्ता पूरा दिन कितना प्रयास करता है, इधर से उधर भागता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, एक रोटी, सूखी रोटी मिलती है उसको। एक रिक्शे वाला जो है पूरा दिन प्रयास करता है, लेकिन बेचारा कभी घर भी बना नहीं पाता है। तो इसका मतलब प्रयास से तो नहीं मिल रहा है, ये किस लिए मिल रहा है, अपने प्रकृति के गुणों के कारण जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए उसका फल भोग रहे हैं। तो अगर आज कोई दुख भी आता है, तो पूर्व जन्म में किया गया पाप ही है। तो अब हमें पूर्व जन्म के पाप का फल तो आज मिल रहा है, तो इसका मतलब आज हमें पाप करने से बचना चाहिए। और पाप करने से बचने का सबसे सरल रास्ता है कि हम पाप करने की प्रवृत्ति को त्यागें। पाप को तो त्यागें, प्रवृत्ति को भी त्यागें। और प्रवृत्ति त्यागने के लिए सबसे आसान तरीका है भगवान के नामों का जप करना। जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप करेगा, उसकी प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, एकदम नलिफाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से सनातन गोस्वामी जो थे वो वृंदावन में रहते थे, और जब जयपुर में विग्रह ले गए, तो औरंगजेब को जैसे एंटर करता देखा, तो वहां के राजा ने क्या बोला, अरे औरंगजेब, तुमसे अच्छा तो कोई राजा हुआ ही नहीं है, क्या लड़ाई करी है तुमने, क्या तुमने पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर लिया है। वो खुश हो गया, करा अच्छा तुम्हारे जैसा बन जाओ ना, तो मेरे जीवन का सपना है। औरंगजेब तो हवा में हो गया, 6 फुट ऊंचा चला गया। आप किसी की तारीफ करो, दुश्मन हो आपका, आप देखना आपका दोस्त बन जाएगा वो, आप तारीफ करिए बस उसकी। ऐसे जब तारीफ करी, तो उसने क्या बोला, देखो अपने सैनिकों से सारे इंडिया को तोड़ दूंगा, लेकिन जयपुर राज्य जो है ना, राजस्थानी राज्य जो है, इस राज्य को टच नहीं करूंगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मंदिर जो है आज टाइम राजस्थान में प्राप्त होंगे। वृंदावन के विग्रह भी जयपुर में है, और जयपुर को बोला जाता है गुप्त वृंदावन, उसको गुप्त रूप से रखा गया है। जो ओरिजिनल वृंदावन के विग्रह थे, वो जयपुर में बड़े बड़े राजाओं के महल के अंदर रखे गए हैं। राधा गोविंद देव जी जो वृंदावन में पूजा किया करते थे गोस्वामी, आज वो आपको जयपुर पैलेस के अंदर प्राप्त होते हैं। सिटी पैलेस जो है, उसके अंदर राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। तो इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी के पास जब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया और जाकर बोला मुझे क्या चाहिए, सबसे कीमती वस्तु चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कीमती वस्तु चाहिए, तो एक काम करो तुम यहाँ से बाहर जाओ, मेरी झोपड़ी के बाहर एक कूड़े का कूड़ादान है, लेफ्ट साइड में कूड़ेदान में चिंतामणि है और लेफ्ट साइड के राइट साइड के कूड़ेदान में क्या है, पारसमणि है। जो तुम्हें चाहिए चिंतामणि या पारसमणि कोई एक पत्थर उठा के ले जाओ। तो वो बड़ा खुश हो गया, कूड़ेदान में गया, पूरा कूड़ा हटाया और है ना एकदम गोबर भी पड़ा हुआ है, कचरा भी पड़ा। आदमी देखिए कितना लालची है, एक धन प्राप्त करने के लिए गंदे से गंदे स्थान में चला जाएगा, है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बोलते हैं ना कभी कोई लुटेरे मिल जाते हैं रस्तों में ना लोगों को और बोलते हैं औरतों को चलिए अपना कुंडल उतारिए, अपना ये उतारिए, पर्स दीजिए। तो खैर ना औरतें कुंडल बचाने के चक्कर में कान कटवा लेगी लेकिन कुंडल नहीं उतारेगी। चमड़ी जाए दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये धन कितना आसक्त है, इसको छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि शरीर छोड़ने के बाद कोई लेके नहीं गया आज तक, ये कुंडल भी यही रह जाएगा, ये कपड़ा भी यही रह जाएगा, ये शरीर भी यही रह जाएगा, फिर भी हम उसी में अटैच जाएगा। और ये अटैचमेंट कैसे जाएगा, सिर्फ भगवान के नामों का जप करने से, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा कचरा निकाला, कचरा निकाल के पारसमणि को बाहर निकाला और पारसमणि लेकर अपनी पत्नी के पास गए, बोले हो यूरेका, हो जय हो, आज तो मुझे पारसमणि मिल गया है, बोलो किस किस वस्तु को सोना बनाना है। तो बोली ये पारसमणि कहाँ रखा था, पूरी कथा बताओ। तो उसने कहा देखो इधर कचरा था, इधर कचरा था, इधर के कचरे में चिंतामणि था, इधर के कचरे में पारसमणि था। तो मैंने सोचा तुम्हें सोने के आभूषण पहनने की इच्छा अभिलाषा है तो मैंने पारसमणि को उठा लिया, अभी लो पारसमणि तुम्हारे लिए। अरे तुम मूर्ख के मूर्ख रहोगे, है ना, पत्नियां तो ऐसे डांटते हैं इंडियन हस्बैंड्स को, अरे आप तो मूर्ख ही रहेंगे, क्या क्या हुआ। बोले आपने पारसमणि ले लिया जो कि कचड़े कचड़े में पड़ा था, आपको बोलना चाहिए था तिजोरी में जो रखा है वो दो, इसका मतलब इससे भी ज्यादा कीमती वस्तु तुम छोड़ा है, शिवजी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और तुम हो कि अपना भाग्य बदलना ही नहीं चाहते। हो सकता है कोई ऐसा रत्न होता जो डायमंड बना था, तुम सोने पे संतुष्ट होकर आगे जाओ वापिस जाओ। तो बेचारा क्या करता, हिंदुस्तानी दौड़ा दौड़ा गया, जाकर सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया और बोला हे गुरुदेव ये पारसमणि नहीं चाहिए, ये चिंतामणि भी नहीं चाहिए, जो आपके लॉकर में रखा है ना वो प्रदान कर दीजिए। अच्छा लॉकर वाली चीज चाहिए, फिर रोगे तो नहीं। अरे है रोने का सवाल ही नहीं उठता, मेरी मेरी वाइफ ने पूरी इजाजत दी है कि लॉकर वाले लेके आना, ठीक है। तो उसका एक ऑप्शन है क्या, पहले पारसमणि उठा के यमुना नदी में फेंक दो। तो उसने पारसमणि लिया और यमुना नदी में फेंक दिया। अब जल्दी से लॉकर वाला निकालिए, ठीक है आओ अंदर ले गए कुटिया में, एक अलमीरा थी, अलमीरा खोली, अलमीरा के अंदर से एक क्या निकाला, ये बीड़ बैग निकाला और इसमें एक माला थी और बोले कि ये लो। बोले ये क्या है, बोले पारसमणि रत्न से भी ऊपर की चीज वस्तु है, पारसमणि से भी ऊपर की वस्तु है क्या। बोले अपने घर जाओ और क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उसने कहा कि अच्छा ये उससे ऊपर की वस्तु है, वो तो बेचारा खुश हो गया, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, आया और अपनी पत्नी को बोला कि उन्होंने कह रहे तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही संसार के लोगों को आप बोलेंगे ना, हम एम्स जाते हैं, हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ट्यूसडे को मंगलवार को, वहां पर हरि नाम की महिमा बताई जाती है, तो लोग बोलेंगे अरे तुम पागल हो गए हो, कमाने की उम्र में भी कहां साधुओं के चक्कर में, इनसे खुद के पूछो इनके पास कितना धन होता है। एक्चुअली क्या सही साधु सही को जानते नहीं है लोग, जैसे बाजार में 500 रुपए का नकली नोट भी है और 500 रुपए का असली नोट भी है, लेकिन असली नकली की पहचान कौन बताएगा, कौन सा असली नोट कौन सा नकली नोट, बैंकर्स बताएंगे, है ना, आरबीआई की गाइडलाइंस बताएंगे। ऐसे ही ये जो शास्त्र है ना भगवत गीता, ये बताते हैं कि कैसे असली साधु होता है और कैसे व्यक्ति जो है नकली होता है। तो असली नकली की पहचान अगर कोई करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में क्या पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए और उसका प्यूरिफिकेशन होगा भगवान के नामों का जप करने से। जब वो जप करेगा तो भगवान कहते हैं मैं उसको क्या प्रदान करूंगा, सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा सतत कीर्तन करेगा मैं उसको क्या दूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते, मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा, वो समझ पाएगा असली कौन नकली कौन, है ना। तो इसलिए कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु, क्या चार चीजें बताई गई है, भक्त भक्ति भगवान और गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर चतुर नाम बपु एक, ये जो चार चीजें हैं ये एक वस्तु है क्या, जो इनके शरणागत हो काटे विघ्न अनेक, जो भी इनके शरणागत होगा उसके अनेकों विघ्न समाप्त हो जाते हैं। क्या क्या चार चीजें बताएं, भक्ति भगत भगवान और गुरु। तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि भक्त कौन है, है ना, तो बताते हैं भक्त वो व्यक्ति है जो व्यक्ति आपको कृष्ण के बारे में बताता है, वही व्यक्ति भक्त है। जो व्यक्ति वैरागी है, शमा दम तपो सोचम शांति अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्मण कर्म स्वाभजम, वो व्यक्ति ब्राह्मण वैष्णव भक्त बन सकता है जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा दमा तपा शौचम हो, तपस्वी हो, 4 बजे उठकर मंगला आरती करता हो, भगवान के नामों का जप करता हो, 9 बजे तक सोता नहीं हो, सूर्यवंशी ना हो, चंद्रवंशी हो। सूर्यवंशी मतलब जो सूर्य उठने के बाद में आते हैं, चंद्रवंशी जो चंद्रमा रहते रहते उड़ जाते हैं। आप लोग कौन है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी? सब सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है। ठीक है, ठीक। तो हमको क्या बनना चाहिए? चंद्रवंशी बनना चाहिए। भगवान कृष्ण भी चंद्रवंशी हैं, है? तो आप देखेंगे भगवान जो है वो, जो कृष्ण भगवान है उनका जन्म कब होता है? अष्टमी के दिन, है ना। और भगवान राम का जन्म कब होता है? नौमी के दिन। ओ, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, लोग तो प्रश्न पूछते हैं, अजीब अजीब से प्रश्न भी होते हैं कुछ, तो उसने पूछ रहे थे भगवान नौमी के दिन क्यों आते हैं और कृष्ण अष्टमी के दिन क्यों आते हैं, बता सकता है कोई? हाँ हाँ जी, पहले त्रेता आया था इसलिए, नहीं तो उससे नौवीं अष्टमी का क्या मतलब हुआ ये नहीं पता। तो भगवान नौमी को क्यों आते हैं? राम नौमी, सीता नौमी, दोनों नौमी को आते हैं। राधा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा रानी और कृष्ण भगवान अष्टमी को आते हैं। क्यों? अभी देखिए, मैथमेटिक्स तो सब जानते हैं, तो 9 का टेबल जानते हैं, 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो 9 के टेबल को जब ऐड करेंगे, 9 वो 18 को 1 प्लस 8 9, 27 2 प्लस 7 9, तो हर एक चीज का टोटल क्या आता रहेगा? 9। और जब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए क्या आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये क्या हो रहा है, पहले 8 फिर 16, 1 प्लस 6 7, फिर 24, 2 प्लस 4 6, ये रिड्यूस हो रहा है, 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी मर्यादा है किसी के कहने पर भी नहीं टाल सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, किसके कहने पर? किसके कहने पर अपनी पत्नी का त्याग किया? धोबी के कहने पर, है ना। लेकिन भगवान ने कोई आसानी से नहीं त्याग दिया था, धोबी ने जब इस प्रकार बोला कि आपकी पत्नी जो है इतने समय तक रावण के पास रह के आई है, आप उनका त्याग क्यों नहीं करते? हमारे ही अयोध्या में एक स्त्री थी जो कि कुछ समय अपने किसी एक व्यक्ति के पास रह के आई और उसने उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तो आपको भी त्याग करना चाहिए। तो जो सीता जी थी वो बोली कि देखिए स्वामी, अगर आप चाहते हैं ना कि आप राजा बने, तो राजा को परिवार से ऊपर का होना चाहिए और साधु को भी परिवार से ऊपर का होना चाहिए। आज हमारा भी परिवार है, है ना, लेकिन हमें परिवार के कल्याण से ज्यादा किसके कल्याण की आवश्यकता है? संसार के कल्याण की आवश्यकता है। तो अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स है ना, उसका कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ही कोई व्यक्ति साधु बनता है, और अपने परिवार की नीड्स का कॉम्प्रोमाइज करने के बाद कोई व्यक्ति श्रेष्ठ राजा बनता है। लेकिन आज के जैसे राजा नहीं होते हैं जो पहले अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, बाकी जाए आप जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जो राजा थे रामचंद्र जी, वो श्रेष्ठ राजा है। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपना कॉम्प्रोमाइज, अपनी जीवन की अपनी फीलिंग्स का कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये सीता जी ने बोला उनको कि जब आप राजा बने, आपने क्या वचन लिया था गद्दी पे बैठने से पहले, क्राउन पहनने से पहले, ताज पहनने से पहले, कि मैं अपनी प्रजा को ही अपना परिवार मानूंगा। और आज आप क्या हो रहे हैं, बड़े पर्सनल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कैसे सीता तुमको निकाल सकता हूं, तुमने गलत ही क्या किया है। लेकिन उन्होंने कहा वो प्रजा ही, वो राजा ही क्या जो अपनी प्रजा की संतुष्टि ना चाहे, जो अपनी प्रजा का कल्याण ना चाहे। और आपकी प्रजा अगर मेरे रहने से दुखी है तो आप राजा बनने योग्य नहीं है, इसलिए मेरे निकालने से अगर प्रजा संतुष्ट हो तो मुझे निकाल दीजिए। तो सीता जी के प्रवचन के कारण ही रामचंद्र जी ने उनको त्यागा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो 9999 आता है। लेकिन कृष्ण जो है ना, उनको कोई बांध नहीं सकता किसी भी बाउंड्री में, वो बोलो तो छल से पूरा महाभारत जितवा दिए, है ना। तो ये कृष्ण जो है वो 8 7 6 5 4 ये बता रहे हैं, सारी सीमाओं को तोड़कर 0 तक भी आ सकते हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है ना, वो व्यक्ति सारी सीमाओं को लांग जाता है। कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरम यत कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। इसका अर्थ है मुखम करोति वाचालम, जो व्यक्ति गूंगा है ना वो बोलने लग जाता है भगवान की कृपा से, माधव की कृपा से, है ना। आप बोलेंगे कि गूंगा व्यक्ति कैसे बोल सकता है, प्रभु जी हमारे एम्स में भी अगर गूंगे का डिपार्टमेंट है डेफ एंड डम, तो वहां बुलवा के दिखाइए। बोलने का मतलब है कि जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं जानता ना, लेकिन अगर वो भक्ति करने लगेगा, भगवान के नामों का जप करने लगेगा, तो आप देखिए जब आज से अगर 10 साल पहले कोई मुझसे बोलता कि कृष्ण के बारे में बोलिए, तो मैं नहीं बोल सकता। अभी मैं 2 घंटे ड्राइव करके आया, मैंने प्लान भी नहीं किया क्या बोलना है, यहाँ बैठते ही मैं बोलने लगा और मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक ही बोला होगा, है ना। तो इसका कारण यह है कि मुकम करोति वाचालम, मेरे जैसे गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, आप जहां से जब जाते हैं तो आप कृष्ण के बारे में बोल पाते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरम, जो व्यक्ति लंगड़ा है ना पंगुम, वो गिरी मतलब पहाड़ को लांग सकता है। तो आप बोलेंगे एम्स में बहुत सारे कैलिपर्स लेके चलते हैं, उनको भी आप लंगवा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे कार्य को करने के लिए इतना स्ट्रेस लेते हैं अपने जीवन में, उस स्ट्रेस के बिना ही अगर हम कार्य को पूर्ण कर सके तो यही तो हुआ पंगुम लंगते गिरम। लंगड़ा व्यक्ति छोटे छोटे कार्य को पूर्ण करने में ही लंगड़ा लंगड़ा के गिर जाता है। एक बेटी की शादी करनी हो ना, उसमें 2-3 हजार लोगों को खिलाना हो तो कितने कष्ट हो जाता है। अभी हमारे इस्कॉन का एक प्रोग्राम चलता है, हम उसको निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, वहां पर मैं सेवा करता हूँ, इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, उसमें हम डेली 12 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं, डेली 12 लाख लोगों का खाना बनता है, प्रसाद बनता है। आप सोचिए कि यहाँ पर शादी में 2-3 हजार लोगों को खिलाने के लिए व्यक्ति लंगड़े जैसा हो जाता है, पूरा जीवन मेहनत करता है लड़की की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए, और उसके बाद बोलता है सारी संपत्ति लग गई मेरी तो, और यहाँ हर रोज 12 लाख लोगों को खाना खिलाना है। आप सोचिए ये कैसे हो पाया है। पंगुम लंगते गिरम, अगर कोई शरण लेगा ना माधव की, वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है ना। और फिर कहते हैं क्या, यत कृपा तम हम वंदे, ऐसी कृपा हम पर भी करिए। कौन? श्री गुरु दीन तारणम। हे गुरु, जो दीन बंधु हैं, दीन मतलब दुखियों के बंधु हैं, गुरु वो गुरु हैं जो कि दुखियों के बंधु हैं, वो गुरु ना हो जो दुनिया को दुखी कर दे, सही है। और जो आपको क्या दे, माधव दे, है ना, परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। और ऐसे ही चैतन्य ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले मायापुर कलकत्ता धाम में आते हैं, जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, और वो स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार है। तो हम अपने जप को स्टार्ट करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और बोलते क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। इस मंत्र का उच्चारण एक बार करें और फिर हरे कृष्ण का 108 बार करें। इसको करने से क्या होगा, 108 बार जब आप हरे कृष्ण का जाप करेंगे, उसमें जो भी अपराध पाप आपसे होगा वो सारा कृष्ण चैतन्य क्या करेंगे, नलिफाई कर देंगे। इसलिए 1 टाइम श्री कृष्ण चैतन्य बोलना है और 108 बार हरे कृष्ण बोलना है, ठीक है। और आपको इसको अगर और सरलता से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको कृष्ण से संबंध स्थापित करना है ना, किसी से अगर संबंध स्थापित करना हो तो सबसे पहले क्या वस्तु लेते हैं हम उस व्यक्ति से, अगर रिलेशन बनाना हो तो क्या लेते हैं सबसे पहले उस व्यक्ति का, आज के युग में नाम और फोन नंबर, है ना। तो सबसे पहले नाम, तो नाम तो आपको बता दिया कौन है, कृष्ण। नाम क्या है भगवान का, भगवान कौन है, कृष्ण, एक ही बगला भगवान है, ठीक है, नाम पता चल गया। अभी संबंध स्थापित करना है, है ना, संबंध स्थापित करने के लिए फोन नंबर नहीं है, तो फोन नंबर बताया गया उनका, क्या है फोन नंबर, नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप बोले प्रभु जी यहाँ से गोलोक धाम लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे कैसे लग जाएगा, मोबाइल नंबर है, यहाँ से अगर आपको कलकत्ता मिलाना है, बॉम्बे मिलाना है, तो आगे एसटीडी कोड लगता है, तो इस मंत्र के आगे भी एक एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा, है ना। क्या एसटीडी कोड है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जब ये पंच तत्व का नाम हम लेंगे और उसके बाद 108 बार हम नंबर को मिलाएंगे, तो आप देखिए इसी जीवन में आपका क्या होगा, कृष्ण से नाता स्थापित हो जाएगा। यू गेट अ रिलेशनशिप विद कृष्णा वेरी इजीली वेरी सून एंड आई प्रे दैट यू विल गेट इट इन दिस लाइफ टाइम ओनली। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, पूछिए अपना प्रश्न, आप बाद में पूछेंगे, इससे अच्छा सभी का कल्याण होगा, दूसरों के लिए पूछिए। कोई प्रश्न नहीं किसी के मन में, सब जानते सब कुछ शास्त्र, मैं पूछूं? हाँ जी हाँ जी, कोई दुविधा आपको जब करने में परेशानी, मन नहीं लगता, कोई भी प्रश्न है आपका पूछिए, वरना ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता ना साधु संग करने का। यस, एनी क्वेश्चंस प्रभु जीज, कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी आपका प्रश्न, हाँ पूछे
प्रभु जी, बताओ जी, हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा ध्यान कुछ भटक जाता,
हाँ आप में से कितनों का भटकता है? अगर आप पूछ नहीं रहे, देखिए वो वीर है ना, पूछ रहे हैं।
हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय कभी कभी हमारा ध्यान भगवान के चरणों में ना जाते, कहीं और चला जाता है।
हाँ,
ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग एक होती है, कंडीशनिंग है ना। तो कंडीशनिंग क्या, धर्मवीर प्रभु ना, क्या नाम आपका?
धर्मवीर
प्रभु, मुझे लास्ट टाइम बताया था आपने, याद है मुझे धर्मवीर। तो क्या होता है धर्मवीर प्रभु जी, कि जब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है ना, जैसे रात को मान लो आपने एक फिल्म देखी। कौन से फिल्म देखते हैं आप लोग? फिल्मिंग आजकल कौन सी फिल्म आई है लेटेस्ट? पीके, सुना है आपने नाम? देखी है पिक्चर? तो जब पीके देख के रात को सोएंगे, तो सुबह उठेंगे, रात को सोते में सपना भी आएगा एक दो बार पीके का, और फिर सुबह उठने के बाद उसमें जो होते हैं ना क्या गाने, फिल्मी गाने, उनको आप गुनगुनाएंगे मॉर्निंग में, है कि नहीं? होता है इसी प्रकार से। और रात को अगर आप कीर्तन में गए हो, जैसे अभी आप प्रवचन से होकर जाएंगे वापस, तो अगले एक डेढ़ घंटे तक तो आप हरे कृष्णा बोलेंगे बोलेंगे, मन में चलता रहेगा, जब तक कोई दुविधा आपके जीवन में नहीं आती है ना। जैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, दुविधा आती है, तुरंत हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा अटूट नहीं है, कोमल श्रद्धा है। तो इसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ करते हैं कोमल श्रद्धा में, तो क्या होता है, जो हमारा पीछे की प्रक्रिया होती है ना पूरे दिन की, वो हमारे मन को भटकाने में वो करती है, परेशान करती है। इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि हमको 24 घंटे का भक्त होना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हम तो आपकी तरह नहीं छोड़ सकते सब कुछ, हमें तो नौकरी करनी, परिवार पालना है। तो क्या करिए, जब भी गाड़ी चलाएं, है ना, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, घर में सफाई कर रहे हैं या कोई किसी से मिलने जा रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, जब भी घूमें तो बस एक ही मंत्र का उच्चारण करें। क्या बोलते रहें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मन को स्थापित करने के लिए, एक जगह केंद्रित करने का ही मंत्र है। इससे क्या होगा, मंत्र का मतलब होता है मन त्रायते इति मंत्र, द थिंग विच डिलीवर्स योर माइंड, जो आपके मन को एक जगह केंद्रित कर दे वही मंत्र है। और ये है महामंत्र, मतलब इसके बराबर और कोई मंत्र है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को बोलेगा तो उसका मन निश्चित रूप से लगेगा। तो और जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं ना, खाने की, पीने की, सोने की, वो सारी प्रक्रिया क्या हो जाएंगी, दिव्य हो जाएंगी, है ना। उनमें भगवान के नामों का जप करने से दिव्य, जैसे यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं या प्रसाद पा रहे हैं, पाते पाते अगर हरे कृष्णा बोलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते हरे कृष्णा बोलेंगे, तो वो झाड़ू क्या हो जाएगी, कीर्तन हो जाएगा, है ना। कार चलाना क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से हम अपने 24 घंटे, इवन सोना भी हमारा भक्ति हो सकता है। कैसे? सोने से पहले एक मंत्र का जाप करके सोए, तो रात को जो भी आप सोएंगे ना, भगवान उसको कहते हैं अगर तू जाप करके सोया या कथा सुन के या कथा पढ़ के सोया, तो पूरी नींद क्या हो जाएगी, भक्ति में सेवा में काउंट हो जाएगी। और पूरी रात जो सोएगा ना, तो मैं मानूंगा तू मेरा दंडवत प्रणाम कर रहा, लेटा हुआ मेरे लिए, है ना। लेकिन आपको रात को सोने से पहले भगवान के नामों का जप या कीर्तन या कथा करके सोना पड़ेगा। इफ यू